ഓം ശാന്തി. കൽക്കി മുള്ളി ഗുഞ്ചതിയ കാണോ മേ പുണ്യാത്മ. അപുണ്യാത്മാവോ കെ ബാരെ മേ ബഹുത് കുച്ച് താ. और एक बहुत गुह्य बात थी, जिसको ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत कम जानते हैं और जो जानते हैं उनमें से भी बहुत कम उसके अभ्यास को करते हैं. अधिकार, पहले हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे. अधिकार बोले, किस किस पर हमारा अधिकार है? किस किस पे अधिकार है, किस किस पे हो सकता है? बोलो, आप सब जानते हैं. बोलो, ठीक बोल रहे हैं. एक बोला सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है. इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे हम. कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार, अर्थात स्वयं पर अधिकार. और बोलो, संकल्पों पर हमारा अधिकार हो सकता है और है, दोनों बात सोच के बोलेंगे. बोलो, सबसे बड़ी चीज है बाबा पर हमारा अधिकार, और उसके साथ हो जाता है उसके सर्व खजानों पर अधिकार. उसमें शक्तियां भी आ गई. उसके सर्व खजानों पर अधिकार, ज्ञान पर भी अधिकार हो गया ना, माना हम ज्ञान में परफेक्ट हो गए, संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी भी बन गए और अब देने वाले भी, अथॉरिटी, हमारा अधिकार. और अधिकार से इन सब चीजों को यूज करना, शक्तियों पर अधिकार, ये सबसे गुह्य बात है. उन्हें यूज करना, ये बहुत गुह्य विधि है. भगवान पर अधिकार और उसे भी अधिकार को यूज कर लेना, है बाबा पर अधिकार या ये कहने की बात है केवल? बोलो भाई, बताओ, है? क्योंकि ये बात उसने स्वयं कह दी, लास्ट आने वाले फास्ट. ये बात उन्होंने स्वयं कह दी, बाबा पर भी हमारा अधिकार है, इस अधिकार को यूज करो. सवेरे के समय को देखो, किस पे अधिकार होता है? नहीं, अमृत वेले किस किस पर अधिकार? अभी ध्यान देना इस पर और कल से इसका फायदा उठा लेना. सवेरे बाप भोलानाथ बनकर बैठता है, वो भाग्य विधाता है, उससे अपनी भाग्य की रेखाएं खिंचवा सकते हैं. बहुत जगह पड़ी है, खुले बैठ जाओ, जगह खाली है अभी. उससे अपने भाग्य की रेखाएं खिंचवा सकते हैं, भगवान पे अधिकार है, उसको मना सकते हैं, उससे कुछ भी ले सकते हैं. जैसे किसी का बाप राजा हो, राजकुमार राजा के पास जाएगा, देखो दुर्योधन क्या क्या करता था, कहानियां तो सबने, अब सबको पता हो गई. अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है, और अधिकार को प्राप्त करना, कलयुग में तो लोग कोर्ट में जाते हैं अधिकारों के लिए, और अधिकारों को पाकर भी सुखी नहीं है. लेकिन हम अधिकार प्राप्त करेंगे, और विशेष रूप से बाबा पर हमारा अधिकार, जब चाहे उसे बुला ले, वो आनाकानी नहीं करेगा कि मैं बिजी हूं. क्या समझती हैं बहनें? कहेगा बहुत बिजी हूं तुम घड़ी घड़ी बुलाते हो, तंग कर दिया तुमने मुझे, ठहरने ही नहीं देते शांति धाम में, घड़ी घड़ी बुला लेते हो, कहेगा नहीं। उसको अच्छा लगता है जैसे माँ बाप किनके साथ खुश रहते हैं, और अगर बच्चों को अलग कर दिया जाए, देखो बच्चों को जब हॉस्टल में भेजते हैं तो दोनों के जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता है। आप ये ना सोचो बच्चे वहाँ खुश होते हैं, फ्रेंड से तो वो मिल जाते हैं, पर माँ बाप की पालना अलग होती है। इसलिए जो बहुत छोटेपन से बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं उनका चरित्र बहुत श्रेष्ठ नहीं रह जाता। भगवान को भी किनके साथ मजा आता है, बाबा ये बात मुरली में भी कहते हैं, सुनिए ना, आजकल ही कहते हैं। तो हम बाबा को बार बार नीचे बुलाया करें, ये अधिकार होगा, ये हम इसको यूज करेंगे, शक्तियों पर हमारा अधिकार। कितनी शक्तियां हैं, और भी बहुत ज्यादा हैं। मैं एक शक्ति पर आपका ध्यान दिलाऊं, वो है मनन शक्ति, एक है प्योरिटी की शक्ति, एक है स्नेह की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इनको भी यूज करना। मनन शक्ति सबके पास है, इसे यूज करेंगे। अगर इसे यूज नहीं करते, आज बाबा के बहुत अच्छे उत्तर थे, यूज नहीं करते तो क्या करते हैं, और मनन शक्ति को जो यूज नहीं करते, देखो उनका मिसयूज कैसे होता है। किसी ने आपको कोई बात कह दी खराब बात, उस पे मनन चालू हुआ, सो रहे तो भी उस पे मनन हो रहा है, सपने भी उसके आ रहे हैं, ठीक है या नहीं, ये हो गया मिसयूज। तो शक्ति वही है मनन की, लेकिन यूज होने लगे उस व्यर्थ में, उसने बुरा बोल दिया, आज इंसल्ट की, बुरा व्यवहार किया, बहुत अपशब्द बोले, उस पे चिंतन चलने लगा। यही चिंतन अगर ज्ञान का चले तो ज्ञान एक शक्ति बन जाता है, और जब ज्ञान शक्ति बन जाता है तो ये जो व्यर्थ चिंतन है ना, किसी ने कुछ कह दिया, इसको हम सहज ही समाप्त करने में सफल हो जाते हैं। बहुत बड़ी सुंदर चीज है ये कि किसी ने कुछ कह दिया हो और हम सहज ही उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं। होती नहीं आत्मा, उसका चिंतन ज्यादा चलता है। अच्छी बातों के चिंतन के लिए क्या कहती है माताएं, बोलो माताएं दोनों, नहीं टाइम तो बहुत है, कुछ और कहती हैं, हमारा मनन चलता नहीं है। और बहू ने कुछ कह दिया हो आज, सारा दिन मनन चलता है, चलता है या नहीं। इसका अर्थ ये है कि मनन शक्ति सबके पास है, सभी समझ ले माताएं भाई जो ये कहते हैं मनन नहीं चलता, मनन चलता है, मिसयूज। इसलिए इस शक्ति को यूज करें। कौन कौन चाहते हैं मनन शक्ति हो जाए, हाथ उठाने में बाबा भी कहता है बड़े होशियार हैं सब, करेंगे जो मैं एक छोटी सी बात कहूं, रोज एक 10 मिनट निकालना, और देखो बहुत अच्छी बात होती है अगर रोज सेम टाइम करें, और मुरली के बाद करें तो और अच्छी बात। मुरली सुन के आप घर आओ, तुरंत कामकाज में नहीं लगना चाहिए, ये इस स्टूडेंट लाइफ को आगे बढ़ाने का बहुत सुंदर तरीका है। पर आप अपने घरों में देख लीजिए कितना संभव है, क्योंकि नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, कई लोगों का ही काम है, लेकिन अगर आप एक टाइम फिक्स कर लो, मान लो आपने 8:30 का टाइम फिक्स किया किसी भी एक टॉपिक पर 10 लाइन लिख दो और रोज 8:30 लिख दो, वो टॉपिक आपको मुरलियों से मिलते रहेंगे। देखो एक भाई हमारे ज्ञान सरोवर में है, वो टीचर है, उसने आते ही मुझे कहा, सेवा में आया कि मुझे मनन शक्ति का बढ़ाना है अपना, आप मुझे कुछ बताओ। मैंने पहले दिन उसको काम दिया, आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं वो लिख कर लाना। वैसे कोई मनुष्य सोचे 2-4 बातें सोचेगा, उसको मनन होता नहीं था, पर देखो पहले दिन उसने 35 पॉइंट लिखी, उसको समझ में आ गया मनन शक्ति मेरे पास है, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन मैंने परमात्मा के बारे में लिखने का और ज्यादा लिख दी, बहुत सारे टॉपिक उसे दिए, वो लिख रहा है। लिखना मनन शक्ति को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है, लेकिन मनन उनका नहीं चलता जो व्यर्थ में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ब्रेन की शक्ति, सभी विचार करेंगे अच्छी तरह डीपली सोचें, ब्रेन की शक्ति हर एक के पास लिमिटेड है। और कलयुग के अंत में आपको अपने बच्चों के बारे में ये बात जाननी चाहिए, कलयुग के अंत में बहुत मनुष्यों के ब्रेन की शक्ति काफी कम है और बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है। इसमें बैलेंस रखना है, इसलिए बच्चों को ऐसा भोजन अवश्य खिलाना चाहिए जिससे बुद्धि का विकास हो, उसको बल रहे। नहीं तो बहुत युवकों में क्या हो रहा है, जब मनुष्य छोटा है तो उसकी बुद्धि में काफी ताकत है, वो बड़ा हुआ, अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, 9th में पहुंचते ही होने लगा है बच्चों की बुद्धि डाइवर्ट, नेट में, मोबाइल में, फ्रेंड के साथ, बुरा फैशन पड़ गया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मैं तो सब आप जानते हैं, मुझे कुछ कहने में अर्जा नहीं होता, प्योरिटी भी नष्ट, माइंड भी नष्ट, चल रही बुद्धि उनकी ओर खींची चली जा रही है, पढ़ाई में नहीं लग रही है, तो क्या होता है, पढ़ाई का प्रेशर और ज्यादा। अब आप कहेंगे पढ़ो, वो किताब खोल के तो बैठे हैं, लेकिन याद कर रहे अपने फ्रेंड को, आज उससे मिलना था, वो इंतजार करती होगी क्या करूं अब। मुझे सब युवक ही बताते हैं, मुझे पता नहीं उनका, कि हमारी बुद्धि बहुत डाइवर्ट हो गई, तो समस्या पूछते हैं, अब एग्जाम आ रहा है, हमारा तो कंसंट्रेशन ही नहीं है, हम क्या करें, सारा पैसा बेकार जाएगा। और ये चीज अब 9th से शुरू हो गई, जो पहले कॉलेजों में थी, तो पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा और बड़े होते होते बुद्धि होने लगी डे बाय डे वीक। इसलिए बहुत युवकों में डिप्रेशन आता जा रहा है, और ये बिल्कुल संभव है, 2-4 साल में बहुत सारे युवक डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, क्योंकि कंपटीशन जबरदस्त है उनके सामने, जो नहीं पढ़ते उनकी तो बात ही नहीं, पर जो अच्छे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया है, उनको डिप्रेशन होने की पूरी संभावना है। और डिप्रेशन होता है तो क्या करते हैं युवक, वो जरा बाद में, पहले एडिक्शन, खाने पीने की चीजें बहुत मिल रही है आजकल बाजार में, हमें पता नहीं उनका, उनको पता है, और बीज शुरू होता है डिप्रेशन से, और जब उससे भी नहीं काम होता तो सुसाइड, ये सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत बढ़ती जा रही है संसार में। इसलिए सभी को अपने अपने घरों में क्या करना है, 2 बातों पर बहने तो विशेष ध्यान दें, पवित्र भोजन, ताकि भोजन बच्चों की बुद्धि को ठीक रखे। और उसकी विधि यही, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और दूसरा, घर में योग का अच्छा माहौल। बच्चों को कहने से सुधारा नहीं जा सकता, बच्चे तो छोड़ो, बड़ों को भी। एक बात और मुझे कहनी है सबको बहुत अच्छी। मेरे को कुछ माताएं मिलने आई अभी, कहा बच्चों की समस्या है, दो बच्चे हैं, बड़े हैं, दोनों ही मैनेजर हैं, दोनों को ही शराब की आदत पड़ गई है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया हमारे यहाँ होम्योपैथी मेडिसिन मिलती है, ले जाओ। तो जो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो क्या है, कि दोनों बच्चे मैनेजर हैं, 30 साल से बड़ी आयु हो गई, मैरिड, माँ क्या चाहती है, जो मैं कहूँ वैसे ही तुम्हें करना है। मैंने उस माताजी से पूछा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? हाई स्कूल पढ़ी हूँ। मैं कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं सोचते होंगे जिन्होंने MBA कर लिया, हमारी माँ तो बिना पढ़ी लिखी इसको क्या अकल है, सोचेंगे या नहीं? और माँ सोच रही है ये बच्चे हैं, MBA कर लिया, मैनेजर बन गए तो क्या हुआ, ये तो बच्चे हैं। मैं आपको ये बात एक अच्छी धारणा के लिए कह रहा हूँ, अगर जीवन में सुखी जीना है तो नो एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं नहीं, स्वतंत्र कर दो सबको। ठीक है, बच्चों पे उतना प्रेशर जितना काम चले, उससे ज्यादा नहीं। घरों में समझ गए ना कहां तक स्वतंत्र, स्वतंत्र ये नहीं तुम इधर जा रहे तो जाओ, उधर जा रहे तो जाओ, एक सीमा है स्वतंत्र करने की। घर में विशेष रूप से आपके पास चार व्यक्ति और हैं, चारों को अपनी अपनी बुद्धि है या नहीं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा हो, कार्य करने के लिए उन्हें स्वतंत्र करो, इसकी बहुत जरूरत है। नहीं तो एक की एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं उसे भी परेशान कर रही हैं, उन्हें भी दुखी कर रही हैं। वो उनकी हर कामना को पूरा नहीं कर सकते और उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही तो परेशान है। कईयों की ये कहानी होती, माताओं की खास, मैं बहुत परेशान हूं, क्यों, बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। मैं तो हंसी में एक बात कहा करता हूं, जितना तुम भगवान की सुनोगे दूसरे भी तुम्हारी सुनेंगे। अब हम अपने से पूछ लें, हम तो बहुत समझदार हैं ना, सभी हैं या नहीं, सब कुछ पता है, हमारा इससे भाग्य निर्माण होगा, हमारा इन बातों से कल्याण होगा, पर हम कितनी सुनते हैं उसकी। इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा था पीछे, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो, कहा था ना, भगवान को भी कहना पड़ा, माया की बहुत सुनते हो, बाप है ना तो मेरी कम सुनते हो। तो सुखी रहना है जीवन में, बहुत अच्छी स्थिति बनानी है, कामना रहित, इच्छाओं रहित भी, इच्छाओं का संबंध है स्थूल वस्तुओं से और कामनाओं का संबंध है मनुष्य से। तो अपनी कामनाओं को कम करते चलें। तो हम बात कर रहे थे अधिकारों की, शक्तियों पर हमारा अधिकार है, रियलाइज करें सभी इसको, इस सत्य को स्वीकार कर लें। सर्व शक्तियां हमारे कंट्रोल में हैं। बाबा ने हमें 8 शक्तियां देकर कह दिया, आज से ये शक्तियां तुम्हारी, तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगी। इस सत्य को स्वीकार कर लें, अभी करें सभी, मेरे पास सहन शक्ति है। संकल्प करो, बस मेरी सहन शक्ति, अब मेरे साथ काम करो। और देखो आप में सहन शक्ति भरपूर, हर जगह आपको कोई बीमारी हो गई, कोई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप अपनी सहन शक्ति का इस तरह आह्वान करें, उसे आदेश दें, तो सहन शक्ति बढ़ी हुई नजर आएगी। बहुत अच्छे इसके अनुभव जीवन में होंगे। बहुत अच्छे अनुभव करने सबको निर्णय शक्ति के। हर मनुष्य का निर्णय ही इम्पोर्टेंट चीज है जीवन में। निर्णय गलत हो गए, कई लोग पूरा जीवन पछताते हैं, निर्णय गलत हो गए। एक लड़की कहानी अभी की, उसे डॉक्टर बनना था, बाप इंजीनियर था, कहा नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है। अब बाप की माननी पड़ी, इंजीनियर तो बन गई, लेकिन वो जीवन में खुश ही नहीं है। लेकिन इस ना खुशी ने उसको क्या फायदा दिया, वो बाबा के पास आ गई और फिर मेरे पास भी आई और पूछा, मुझे डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनाया बाप ने, मैं हूं तो सही, पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन मैं खुश नहीं, मैं सेवा करना चाहती थी। अब इंजीनियरिंग फील्ड ऐसा है जिसमें करप्शन बहुत है, है या नहीं? कई बैठे होंगे आप में से इंजीनियर, पूरी चेन चली आ रही है। उसको सेवा भाव था, ऐसे में क्या करना चाहिए, सेवा भाव को उस फील्ड से दूसरे फील्ड में टर्न कर देना चाहिए। सेवा ही तो करनी थी ना, और सोच लेना चाहिए चलो बाबा को वो सेवा मंजूर नहीं थी, अब उसको ये सेवा मंजूर थी, मैं ये कर लेता हूं। अपने विचारों को कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो निर्णय शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट। जब भी आपको इम्पोर्टेंट निर्णय लेने हो, अमृत वेले लेना है। क्यों? जब मनुष्य का मन शांत होता है, तब उसकी निर्णय शक्ति परफेक्ट होती है। एक काम, दूसरा अभ्यास कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास परफेक्ट निर्णय शक्ति है। ये हो गया उसका आह्वान, और फिर याद में बैठो बाबा के, ऑटोमेटिकली परफेक्ट निर्णय हो जाएगा। बहुत सोचने वालों का निर्णय परफेक्ट नहीं होता है। अपने संकल्प को बाबा को समर्पित कर देने पर शांत मन रखने वालों का निर्णय परफेक्ट, कल्याणकारी, लाभकारी होता है। इसको यूज करें आप सभी। इन शक्तियों की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, बहुत। हम अपनी शक्तियों का आह्वान करना सीखें इस तरह। आह्वान माना उनको जगाना। शक्तियां हमारे पास हैं, मास्टर सर्व शक्तिवान की स्मृति से शक्तियां जग जाती हैं, फिर उस शक्ति को ऑर्डर दो जिसकी जरूरत है। एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना सभी। आप थक गए हैं बहुत, घर आए हैं, ऑफिस से आए हैं, काम से आए हैं, थक गए हैं, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब आधे मन से करते हैं, इसका इफेक्ट हेल्थ पर बहुत बुरा आता है कि जब हम थके हों और हमें करना पड़ रहा हो, किसी और का काम नहीं है, काम हमारा है, इसलिए और ज्यादा व्यवस्था होती है ना, करना ही पड़ेगा। ऑफिस का हो तो टाल मटोल कर दें। अब आप थक गए हैं, शक्तियों का आह्वान कर लो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मेरी सारी शक्तियां मेरे पास आ जाओ, मेरे तन मन को फ्रेश कर दो। लेकिन 5 मिनट बैठ जाओ आप शांत में, ऐसा अभ्यास करो और देखो कितने एनर्जेटिक हो जाते हैं बहुत जल्दी, थकान समाप्त हो जाएगी। बाबा का भी आह्वान कर सकते हैं थकान में, 1000 भुजाओं सहित आ जाओ, बहुत काम है, हम थक गए हैं, आ जाएंगे बाबा और आपकी थकान मिटी हुई नजर आएगी, और मिटी हुई नजर आएगी, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ होगा नहीं, क्या भूल ही जाएंगे आप थके थे, चेहरा तो होगा ही पर आप भूल जाएंगे कि हम थक गए थे। पुण्य आत्मा आज बाबा की इस पर वो कल बहुत सुंदर मुरली थी, बड़ी गहन, कई क्लास हो सकती है उसपे। पहले ही 5-7 पॉइंट बाबा ने पुण्य की सुनाई, फिर यूज करने वालों के लक्षण सुनाए। हम सभी संकल्प करें, देखिए बाबा के एक लाइन के शब्द मुझे बहुत प्रिय लगे, तुम्हारे पुण्यों में बहुत शक्ति है क्योंकि तुम्हें तुम पुण्य आत्मा बने हो परमात्मा पावर के आधार पर। गॉडली पावर हमारे पास है, हम इसलिए पुण्य आत्मा बने। पुण्य आत्मा शब्द ही कितना सुखदाई है या नहीं, सोच के देखो, मैं पुण्य आत्मा हूं, सुखद फीलिंग। और कोई ये सोचे मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं, पता नहीं क्या क्या पाप किए मैंने, कैसी फीलिंग, निराशा की। इसको भी स्वमान बना दे, मैं पुण्य आत्मा हूं, पुण्यों से भरपूर, चारों युगों में भले ही पाप भी ज्यादा किए हों पर पुण्य भी बहुत किए हैं। देखो बाबा एक सीक्वेंस बताते हैं, जो जितनी महान आत्माएं उन्होंने भक्ति भी उतनी ज्यादा की तो उन्होंने पाप भी उतने ज्यादा किए, तो वो इस समय योग भी उतना ही ज्यादा करते हैं, फिर उनका पद उतना ही बड़ा हो जाता है, ये क्रम है। तो हमने केवल पाप ही ज्यादा नहीं किए, पाप की गति बड़ी गहन है ना। देखो एक व्यक्ति सम्राट है, द्वापर की बात, कलयुग की बात आप सोचो, एक व्यक्ति सम्राट है, मान लो उसकी प्रजा 5 करोड़ है, उसका कोई गलत निर्णय हो गया, उसे 5 करोड़ लोग कष्ट पा गए, तो एक ही निर्णय ने कितना पाप कर दिया, उतना पाप एक कॉमन मैन 84 जन्मों में भी नहीं कर सकेगा, अगर 84 में भी हो 63 में होते हैं। तो जितनी बड़ी आत्माएं हीरो एक्टर्स हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस तरह के ज्यादा पाप भी होते हैं, इसलिए उन्हें सफर भी करना पड़ता है थोड़ा ज्यादा। ले तो हम याद रखेंगे, हम महान आत्माएं हैं तो बहुत पुण्य आत्माएं भी हैं, और अपने पुण्यों का आह्वान किया करें, पुण्यों का दान किया करें। इस मुरली में इस पे बड़ी सूक्ष्म बातें थी, पुण्यों का दान, अपने पुण्य के बल से तुम किसी आत्मा को दुखी से सुखी बना सकते हो, गरीब से साहूकार बना सकते हो, ये सब बातें थी ना। पुण्य दान, पुण्यों का आह्वान, सीख ले ये कला, आपके जीवन में कहीं कोई बुरा समय आ गया, आपको लगने लगा निकलने का कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, उस टाइम बाबा की याद में बैठो, अपने पुण्यों का आह्वान करो। 1 साल में 2 साल में हमने जितने पुण्य किए हों वो सब हमारे पास आ जाएं। फिर एडवांस पार्टी की महान आत्माओं का आह्वान करो, सब महान आत्माएं मेरे पास आ जाएं, और उनके साथ किसका करो, बाबा का, संकल्प करो आप सभी मिलकर पुण्य आत्माएं, बाबा, पुण्य कर्म, एडवांस पार्टी की आत्माएं, सब मिलके मुझे इससे पार करो, मेरे साथ आ जाओ सब, आप अपने को जल्दी उससे पार होता हुआ देखेंगे। आपका एक बच्चा घर में बीमार है, सीरियस स्थिति है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, इन सब का आह्वान कर लो। मैंने इस जन्म में जितने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, एडवांस पार्टी की सब आत्माएं बाबा सब आ जाओ और इस बच्चे को ठीक करो। पुण्यों का बल और इन सब आत्माओं की ब्लेसिंग्स ठीक करेंगी। बहुत अच्छा अनुभव करने की बात है, ये है सूक्ष्म। इसके लिए पुण्य भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब हमारे पास पुण्य कर्म करने का सबसे सुंदर समय और साधन है, दुनिया में वो लोगों के पास नहीं है। किसके पास पैसा है वो सोचेंगे थोड़ा बहुत दान कर दो, वो करते नहीं। आजकल तो कलयुग के अंत में दानवान सब पूरा हो गया, लोग हॉस्पिटल भी बनाएंगे तो पहले ये सोचेंगे हर मास में कितनी कमाई होगी। पहले लोग धर्मशाला बना देते थे, अब धर्मशालाएं होटल्स में बदल गई। तो वो दान पुण्य तो संसार में भी, भारत ही दान पुण्य की भूमि है, विदेशों में दान नहीं होता, वो भारत से भी समाप्त हो गया। लेकिन हमारे पास बोलो कौन कौन से पुण्य हैं, गिनाओ फटाफट। हैं? मनसा सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को सकास देना सबसे बड़ी पुण्य की विधि। दूसरा ज्ञान दान, जिसे मार्ग मिलता है सबको, गाइडलाइन मिलती है। तीसरा दुआएं देना, क्षमा करना, गुणों का दान। अब बहने बोलेंगी शक्तियों का दान, शांति दान। माताएं बोले सेवादारी, बोलो बोलो, आपके आप बहुत पुण्य करती हो। अरे सेवा करना ही पुण्य है, मधुवन में आके सेवा करना। कौन कौन सेवादारी बैठे हैं, हाथ उठाओ। आप सब बहुत पुण्य कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं? पुण्य हो रहा है, बाबा की नजर आ रही है। सेवाधारियों को ये खास ख्याल रखना चाहिए, सेवा में आना माना भगवान की नजर पड़ने लगी, वो केयर करने लगेगा आपकी। और सेवा, और तरह की सेवाएं, धन से सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य। बाबा के कार्यों में किसी भी तरह से सहयोगी बनना बहुत बड़ा पुण्य है। और पुण्य वो अलग। और बोलो चेयरमैन सब, चेयर तो नहीं है यहाँ पर, बोलो। पवित्र बनना और बनाना सबसे बड़ा पुण्य, उसके वाइब्रेशंस सबसे बड़ा, सबसे बड़े में भी कई हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और ऐसा ही बड़ा किसी को भगवान से मिलाना, उसके लिए सेंटर खोलना। आपने ठीक कहा, बाबा कहा करते थे एक कमरा है उसमें गीता पाठशाला खोलो, चार ने भी वर्षा ले लिया, अगर एक ने राजाई ले ली तो कमाल हो जाएगा, तुम विश्व महाराजन बन जाओगे। तो आत्माओं को भगवान से मिलाना ये भी बहुत बड़ा पुण्य। लेकिन जबरदस्ती तो नहीं मिला सकते ना, देखो ऐसी बात हो गई, हमें अधिकार मिला है सबको भगवान से मिलाने का, लेकिन कोई मिलना ही ना चाहे। सो के पास जाओ, चलो तुम्हें भगवान से मिला दें, क्या कहेंगे? अपना काम देखो, अभी हमें बहुत काम करने हैं। लोग सोचते हैं ना मर के भगवान के पास मिलेंगे, जिंदे ही मिल जाएंगे ये तो पता ही नहीं। तो कितना बड़ा अधिकार मिला और कितना बड़ा पुण्य है। जो लोग आते हैं और देर से आते हैं, ज्ञान सरोवर में आते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे लोग, प्राय लोग कहेंगे हमने आने में बहुत देर कर दी, ये भाई ये बहन हमें 10 साल से कह रहे हैं, कोई तो 20 साल से कह रहे हैं, हम टाल मटोल करते थे, अब सीधा बोलते हैं ना बेचारे, हम बहाने करते थे, हमने कितनी देर कर दी है आने में। ऐसे ही आगे चल के बहुत कहेंगे, ये सब हमें बहुत कहते थे, हमने इनकी सुनी नहीं, लेकिन अब हाथ से खेल निकलता जाता है, निकलता जा रहा है, बस समाप्ति की ओर है तेजी से। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। और क्या याद रखेंगे, एक छोटी सी बात जिसे पुण्यों के प्रति हमें एक सहज फीलिंग रहे हम कर रहे हैं या नहीं, दूसरों को सुख देना पुण्य और सुख छीन लेना पाप। देखो हमने किसी को गलत शब्द बोल दिए, उसका बेचारे का सारा दिन योग नहीं लग रहा अब, ठीक है उसकी अपनी भी दोष है कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पाप बन गया। किसी की हमने खुशी समाप्त कर दी, किसी को गलत राह पे चला दिया। बाबा की बातें सुना दूं, हैं तो थोड़ी कड़वी सुना दूं। कई माताओं को इच्छा होती है हमारे बच्चे तो शादी करें, पीछे ज्ञान में चलना कभी नहीं। और लड़कुमार बहुत स्ट्रांग, शादी नहीं करनी, माँ दुखी, बच्चे शादी नहीं करते, घर में एक भी बहू नहीं, हमारा घर तो खाली रह गया, पड़ोसी बहुत कहते हैं, समाज वाले भी कहते हैं, पाप है पुण्य? माताएं उत्तर देंगी, महापाप। तो तुम कह रहे हो, माताओं को कहने दो ना। फिर माताएं शादी करा के दुखी भी बहुत होती हैं, लेकिन कर लो, मैं भले ही दुखी रहूं तुम कर लो, लेकिन बहुत कुमार करते नहीं, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं बहुत। दूसरों को पवित्र बनने में सहयोग करना बहुत बड़ा पुण्य, और पवित्र आत्मा को अपवित्रता के मार्ग पे ले जाना, तुरंत स्थिति गिरावट की ओर आ जाती है। इसलिए अपने बच्चों की तब तक शादी नहीं करानी है जब तक उनकी इच्छा न हो, जबरदस्ती नहीं, न जबरदस्ती ज्ञान में चलाना, न जबरदस्ती अपवित्रता के मार्ग पर। देखा मैंने माताओं को, बहुत दुखी हो गई उसके बाद, बिना मतलब दुखी हो गई, बीमारियों ने घेर लिए, सुख शांति नष्ट हो गई। इस पाप से भी बचना है। अगर आपकी लड़की पवित्र जीवन जीना चाहती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लड़की को घर में रखना भारी काम है, दुनिया बहुत गंदी है, परंतु हर चीज को सहन करना चाहिए। अगर आपके घर में लड़की देवी है तो, अगर उसकी इच्छा है, चलो वो सेंटर पे जाना नहीं चाहती, वो नौकरी करना चाहती है, लेकिन पवित्र जीवन जीना चाहती है, तो क्या विचार भाइयों का? चुप हैं सब भाई, हैं? मुश्किल काम है, सोच लेना आप। नो डाउट कन्याओं को घर में रखना बहुत कठिन काम, लेकिन अब भगवान की आज्ञा, वो भी तो संभालता है ना फिर। और ये सत्य जानना चाहिए कि अगर कन्या में पवित्रता बहुत अच्छी है, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। बाबा ने बता दिया है, तुम्हारी अपवित्रता के कारण ही किसी के तुम्हारे लिए गलत संकल्प चलते हैं। अगर तुम्हारे वाइब्रेशंस बहुत प्योर हो, तो दूसरे के गलत संकल्प भी प्योर हो जाएंगे। ये सत्य है या नहीं? अब माताएं बताएं, कन्याएं बताएं, ठीक है? बाबा ने ये बात बताई हुई है, जिसकी पवित्रता बहुत अच्छी होगी, लोग गंदी वृत्ति से उनके सामने आएंगे और आते ही देवी का साक्षात्कार करेंगे और चरणों में झुक जाएंगे। ये सीन आने वाले हैं। अब समय तेजी से आ रहा है साक्षात्कार का। जिन्होंने बहुत अच्छी तपस्या की, वो साक्षात्कार मूर्त बनकर संसार का कल्याण करेंगे। सबसे बड़ी सेवा होगी ये, क्योंकि जब साक्षात्कार होने लगते हैं, फिर लोग सीधे नमस्कार ही करते हैं, चरणों में ही आते हैं, जो तुम कहो वही सत्य है। तो हम एक सुंदर समय के, बिल्कुल जिसको हिंदी में कहते हैं ना, दहलीज पर आ गए हैं, किनारे पर आ गए हैं, बीच का थोड़ा सा समय बचा है, लास्ट चांस कि जिसको तेज पुरुषार्थ करना हो वो कर ले। मार्जिन तो समाप्त हो रही है, पर लास्ट, बिल्कुल लास्ट एंड लास्ट, जिसको कुछ भी करना हो वो थोड़ा कर ले। और फिर पुरुषार्थ तो तब तक चलता रहेगा जब तक जीवन है, पर जैसे एग्जाम पूरे होने के बाद पढ़ाई का महत्व नहीं रह जाता, वैसे ही ये समय बीतने के बाद पुरुषार्थ तो चलेगा पर उसका महत्व नहीं होगा। तो सभी स्वयं को क्या बनाएंगे? पुण्य आत्मा और अधिकारी आत्मा। जिन चीजों पर हमारा अधिकार है उनको यूज करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को महान बनाना है। बहुत सुंदर समय है सभी को अंतर्मुखी होकर अच्छी तरह चिंतन करना है। मैंने आप सबकी क्लास में भी कही थी आज ये बात, हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, सब चिंतन करेंगे। कम से कम हम वो तो कर लें जो हम कर सकते हैं, जो नहीं किया जा सकता उसे छोड़ो। भैया बहुत बिजी हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ तो किया जा सकता है। अपने विचारों को तो चेंज किया जा सकता है ना, इसमें तो टाइम की जरूरत नहीं होती। विचारों को चेंज, संस्कारों को चेंज, विशेष रूप से विचार। विचार चेंज होते ही संस्कार स्वयं ही चेंज हो जाते हैं। और चेक कर लें आप, होमवर्क करेंगे यहाँ, 10-10 की लिस्ट बनाओ। मैं ये सोचता हूँ, अब ये सोचूंगा, मैं ये सोचती हूँ, अब ये नहीं ये सोचेंगे। केवल विचारों की लिस्ट बनाओ, अपने को ऑब्जर्व करो, डीपली अपने पे एक नजर डालो, हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, ये होमवर्क आप यहाँ करें। कई लोगों ने फाइनली सोच लिया है, हम तो अमृत वेले उठ नहीं सकते, फाइनल स्टैंप लगा दी है। भगवान ने भी जोर लगा के थक गया वो वे, इन्होंने स्टैंप लगाई, अपने बस का ये काम नहीं, तभी तो मजेदार नींद आती है, तभी उठो। चेंज करें संकल्प को। मैंने बहुत अच्छी तरह कई चीजें अपने एक्सपेरिमेंट में लाई, शरीर को इतनी नींद चाहिए ही, ठीक कर दिया, नहीं इतनी ही चाहिए, इतनी नहीं इतनी, उतने में ही काम होने लगा। क्योंकि ये पढ़ते थे नींद और भोजन ऐसी चीज है, जितना बढ़ाओ चाहे कम करो उतने में ही गुजारा होगा। आपने मन में संकल्प कर लिया 8 घंटे नींद के बिना मैं तो फ्रेश होती नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगी, 9 घंटे सोना पड़ेगा। आप संकल्प कर दो 6 घंटे नींद मुझे पर्याप्त है, 6 घंटे में मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगी, 6 घंटे में मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा, मेरा ब्रेन भी फ्रेश, बॉडी भी एनर्जेटिक। 5-7 दिन लगेंगे, 6 घंटे में ही बरोबर एनर्जी आने लगेगी। तो ऐसे अपने संकल्पों को चेंज करो। मैं एक बात कहा करता हूँ, लास्ट बात, टाइम हो रहा है। जब हम सब बाबा की मुरली में सुनते हैं क्या 8 घंटे मुझे याद करो, तो आप सब भी जो यहाँ बैठे हैं, देखो 350 तो बैठे हैं, 350 में से 5-7 को छोड़कर बाकी सब मुरली सुनते ही क्या सोच लेते हैं, बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटे मुझे याद करो, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे मुझे याद करो, तो क्या सोच लेते हैं, अपने बस का नहीं है। बताओ ठीक है ये बात या नहीं? सूक्ष्म में हमें पता नहीं चलता हमने सोच लिया, ये तो बाबा कहता ही रहता है, अपने अपना सब्जेक्ट नहीं है। ये मधुबन वाले करेंगे, थोड़े से लोग हैं, वो सेंटर में दीदी रहती है, वो कहती मेरे से भी नहीं होता, मैं बहुत बड़ी गृहस्थी हो गई हूँ, बहुत काम सेवाओं का, तो कौन करेगा? सब कह रहे वो करें, वो कह रहे वो करें, वो कह रहे और ऊपर वाले करें, तो फाइनल ऊपर वाला ही कर ले। ठीक है वही कर लेगा हम सब के लिए। कभी बाबा ने कहा था कई बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि योग भी हमारे लिए बाबा ही कर ले, तो बाबा ने कहा ठीक है मैं ही कर लेता हूँ, लेकिन फिर सुख तुम्हें तो नहीं मिलेगा ना। तो हम सभी गहराई से चिंतन करेंगे और अपने जीवन की धारा को पूरी तरह बदल देंगे और सभी भट्टी में आए हुए सेवाधारी या मधुबन निवासी केवल सोचने का तरीका चेंज करेंगे। ओम शांति।
Thank you.